स्कंद पहला अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 15। यद्यपस्त्रं ब्रह्मशिरस् त्वमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाध्य संशाम्यद् भृगुद्वः। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह शांत पड़ गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निरस्त एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी क्योंकि वे ब्रह्म हैं। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह शांत पड़ गया और व्यर्थ हो गया। इस बहुत ही सुंदर प्रसंग में हम देख रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत जिस व्यक्ति को सुनाई गई, उस व्यक्ति का चरित्र जब वो अपनी माता के गर्भ में था तभी भगवान ने पहचान लिया था। और हालांकि यही श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि कपिल मुनि माता देवहूति को बता रहे हैं एक बद्ध जीवात्मा की यात्रा इस भौतिक संसार में, किस प्रकार से वो गर्भ में पीड़ा भुगतता है और उस पीड़ित अवस्था में, उस तप्त अवस्था में वो भगवान को पुकारता है सहायता के लिए। श्लोक है तीसरे स्कंद में, जो गर्भ में शिशु है वो कह रहा है जंतुर्वाच, और इसी श्रीमद् भागवत में यहां पर अब परीक्षित महाराज के विषय में बताया गया है कि वो भी अपने माता के गर्भ में जब थे, परंतु पीड़ा तो दूर की बात है, यहां पर तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था जान से। हम जब गर्भ में थे तो कम से कम इस प्रकार का कोई डर तो नहीं था कि कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है। कहा गया है कि एक शिशु के लिए माता का गर्भ सबसे सुरक्षित स्थान है, और हालांकि कलयुग में तो आजकल ये भी कह सकते हैं कि वो शिशु जो जिनका कर्म ठीक नहीं है या जिनके माता पिता कोई संस्कार नहीं अपने जीवन में पालन कर रहे, तो उनकी भी स्थिति ऐसी ही है कि कोई सुरक्षा नहीं है गर्भ के अंदर, पता नहीं कब उस गर्भ की हत्या हो जाए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य, वो प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि जब वो अपने माता के गर्भ में थे तो उनकी जो दादी थी, दादी या नानी उनमें से कोई, मेरे ख्याल से नानी, उनकी माता की माता, तो उन्होंने सुझाव दिया उनकी पुत्री को कि यदि ये शिशु नहीं चाहिए तो इसकी हत्या कर दो। तो इनकी जो माता थी उन्हें ये सुझाव कुछ ठीक नहीं लगा, हालांकि वो भी पाश्चात्य देश के ही थी और वही प्रकार की संस्कृति, परंतु सुझाव कुछ ठीक नहीं लगा तो सोचा कि नहीं, मुझे ये शिशु चाहिए। और ये भक्त बता रहे थे कि क्योंकि मेरी माता को वो सुझाव ठीक नहीं लगा इसलिए मैं पैदा हो पाया। यदि मेरी माता ने भी वो सुझाव मान लिया होता तो आज पता नहीं मैं कहां पर होता। और क्योंकि मुझे ये मनुष्य जीवन मिला और मैं आपके संपर्क में आया, अब स्थिति ऐसी है कि हो सकता है आपकी कृपा से मैं फिर कभी किसी माता के गर्भ में ना जाऊं। तो देखिए क्या स्थिति है कि कोई शिशु गर्भ में है अपनी माता के, और यदि उसे ये सुनाई दे कि बाहर ये वार्तालाप चल रहा है कि इसे जीवित रखना चाहिए कि नहीं, तो व्यक्ति को कैसा लगेगा? तो यहां पर परीक्षित महाराज, कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि भाई परीक्षित महाराज ने कौन सा ऐसा पाप किया या कौन सा ऐसा कर्म किया कि जिसके वजह से परीक्षित महाराज को ये अनुभव भी करना पड़ा, एक मृत्यु नजदीक जिसके आती है उस प्रकार का अनुभव वो भी क्यों करना पड़ा। आचार्य बताते हैं कि महान भक्त जैसे परीक्षित महाराज इत्यादि, इनके जीवन में जो कुछ होता है वो भगवान विशेष रूप से उसकी योजना करते हैं। एक तो उस भक्त का गुणगान करने के लिए, और भगवान आतुर रहते हैं कि कब मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसलिए भगवान ने अपने मुख से कह दिया, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान ने यह तो कह दिया कि जो दुष्कृत हैं, जो राक्षस हैं, उनका वध करने में आता हूं, परंतु विशेष प्रयोजन भगवान का वो नहीं है। राक्षसों का वध करना तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो भी कर सकती है। ये जो विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध भगवान ने किया, ये सब राक्षसों का वध भगवान केवल यदि इच्छा भी करते तो ये राक्षसों का वध हो जाता था, परंतु भगवान विशेष रूप से अवतीर्ण होते हैं परित्राणाय साधु नाम, उनके जो विशेष भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और इसमें भगवान बहुत विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए यहां पर अब देखिए यह प्रश्न पूछा गया है कि वही भगवान जो माता उत्तरा के हृदय में परमात्मा स्वरूप हैं, परीक्षित महाराज की जो माता है उत्तरा, उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है भगवान, तो वो थोड़ा शॉर्टकट था परमात्मा को वहां से गर्भ में जाना। पहले से ही माता उत्तरा के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, और ये ही नहीं, वही भगवान परमात्मा स्वरूप में परीक्षित के हृदय में भी है, और ये ही नहीं, वही परमात्मा अश्वत्थामा के हृदय में भी है। और इतना ही नहीं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहे हैं, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, कि हर एक परमाणु में, परमाणु कहते हैं एटम को, और परमाणु दो परमाणु के बीच में जो जगह होती है उसमें भी भगवान परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। तो पूरा जो ब्रह्मास्त्र था कितने परमाणु से बना हुआ था, उसके अंदर भगवान अपनी शक्ति के द्वारा हैं, अश्वत्थामा के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप हैं, फिर उत्तरा के हृदय में, परीक्षित महाराज के हृदय में। तो भगवान कितने अलग अलग प्रकार से परीक्षित महाराज की रक्षा कर सकते थे इस ब्रह्मास्त्र से। इसलिए अकबर ने एक बार यह प्रश्न पूछा अपने मंत्री से, बीरबल से, कि ये तुम्हारे हिंदू समाज में देखा जाता है, तुम्हारे ग्रंथों में, कि तुम्हारे जो ये भगवान हैं ये स्वयं अवतीर्ण होते हैं, क्या उनके पास कुछ शक्ति नहीं कि ये सब कार्य अपनी शक्तियों के द्वारा कर सके। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके घर पर यदि आप जाओ तो यदि उसे कुछ करवाना है तो उसके कितने सेवक और नौकर होते हैं। यदि उस व्यक्ति को देखा जाए कि वो भाग रहा है तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लाने के लिए और टेबल साफ करने के लिए, तो पता लगेगा भाई ये लगता है यही नौकर है यहां का। तो ये प्रश्न पूछा गया तो उस समय तो ज्यादातर वो उत्तर नहीं देता था बीरबल, बाद में आगे चलकर किसी दृष्टांत से समझाता था अकबर को। तो कुछ महीनों पश्चात हुआ ऐसा कि अकबर जो हैं वो अपने परिवार के साथ नौका विहार कर रहे थे, और अकबर और उनका परिवार और बीरबल को भी बुलाया, निजी मंत्री हैं, और सारे, जब राजा नौका विहार के लिए जा रहा है तो सैनिक भी नाव में थे, अस्त्र शस्त्र सब लेकर। तो जैसे ही नौका उस सरोवर के मध्य में पहुंची तो बीरबल ने किया क्या, छोटा सा जो शिशु था अकबर का उसे उठाकर फेंक दिया अंदर पानी में। तो अकबर ने जब देखा ये अचानक बीरबल को हुआ क्या, और बिना, पहले तो अभी बच्चे को डाल दिया है पानी के अंदर, वो डूबने जा रहा है, तो बीरबल को तो बाद में देखूंगा, पहले इसको देख लूं। तो तुरंत अकबर ने अपना जो जो राजकीय फेटा था वो सब फेंका, और अपनी जो पोशाक थी राजकीय पोशाक वो उतारी, और अकबर खुद कूदा उस सरोवर में, और अपने बच्चे को बाहर निकालकर जब नाव में रखा तब फिर बीरबल से पूछा, भाई क्या हुआ, क्या माजरा, क्या है, ये कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तुम? क्योंकि अकबर इतने प्रश्न पूछा करते थे, पता नहीं बीरबल कौन से प्रश्न का कब उत्तर किस तरीके से देते थे। तो फिर बीरबल पूछता है कि मैं था, ये सैनिक थे यहां पर, आपको कूदने की क्या आवश्यकता पड़ी जहां पर ना। इस प्रकार से बीरबल पूछता है। तो अकबर कहते हैं तुमने तो फेंका उसे अंदर, और ये सैनिक क्या करते, अरे ये तो मेरा पुत्र है, ये कोई सैनिक का पुत्र थोड़ी है, तो इसको बचाने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ा। तब फिर बीरबल कहते हैं तो आपको प्रश्न याद है कि आपने पूछा था कि आपके भगवान स्वयं क्यों आते हैं रक्षा करने के लिए, तो आप स्वयं उत्तर दे रहे हैं उसका। तो अकबर फिर समझ गए, फिर वो कहे कि महंगा पड़ जाता है कई बार प्रश्न पूछना बीरबल को, बहुत ही विचित्र तरीके से उत्तर दिया है तुमने इस प्रश्न का। तो भगवान इसमें विशेष आनंद लेते हैं जब वो अवसर देखते हैं कि मेरे भक्तों की रक्षा करने का अवसर मिल रहा है मुझे, तो इसलिए यहां पर भगवान स्वयं कहा गया है कि भगवान चतुर्भुज रूप लेकर आए, चतुर्भुज रूप लेकर शंख चक्र गदा पद्म के साथ। तो भगवान चक्र और गदा जो है वो असुरों के लिए रखते हैं, और शंख और जो पद्म है वो भक्तों के लिए, क्योंकि वो शुभ चिन्ह है भगवान के, और भक्तों के लिए शुभ इच्छा के लिए वो शुभ चिन्ह भगवान इस्तेमाल करते हैं, और राक्षसों के लिए चक्र और गदा। तो भगवान ने ये सोचा कि मैं सब कुछ लेकर चलता हूं कि मान लो पता नहीं किसकी जरूरत कब पड़ जाए, तो चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को खत्म करूंगा, और यदि फिर भी खत्म नहीं हुआ तो गदा से उसको छन्नी छन्नी कर दूंगा। तो इतने भगवान देख लिए आतुर थे परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए। इसलिए एक बार श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया कि कई बार ऐसे प्रश्न प्रभुपाद जी को उनके शिष्य शुरुआत में पूछा करते थे, जैसे एक बार प्रभुपाद जी वो व्यासासन पर बैठे थे और कीर्तन के पश्चात उन्होंने अपनी आंख बंद की, तो एक शिष्य तुरंत पूछ लिए, प्रभुपाद जी आप क्या सोच रहे थे? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर भी दिया, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी उसे फटकार दिए कि समझ में नहीं आता है क्या प्रश्न पूछना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि आज माता यशोदा ने कृष्ण के टिफिन में क्या पैक किया है। तो वो भक्त, अरे बाप रे, तो वो समझ गए कि प्रभुपाद जी संसार के नहीं है। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी आपने कहा परमात्मा सबके हृदय में है, तो खड़े हैं कि बैठे? देखिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा खड़े हैं, और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतने आतुरता से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जीवात्मा उनकी तरफ अपना मुख करेगा, और शंख चक्र गदा पद्म के साथ वो खड़े हैं आतुरता से उस हर एक जीवात्मा की रक्षा करने के लिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति ये तो सोच सकता है कि परमात्मा आतुर होंगे जब वो जीवात्मा मनुष्य देह में जाता है, क्योंकि मनुष्य देह में ही चांस है परमात्मा की तरफ अपना मुख करना, परंतु परमात्मा उसी स्थिति में हर एक योनि में है। जब हम एक चींटी थे तब भी परमात्मा उतनी ही आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये जीवात्मा चींटी के शरीर में भी यदि मेरे तरफ देखता है तो मैं कब सहायता करूं इसकी। तो सोचिए कितने जन्म जन्मांतर से भगवान परमात्मा स्वरूप के रूप में हमारे साथ हैं, वो भी भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए एक कारण है भगवत धाम जाने का कि यदि हमें परमात्मा को छुट्टी देनी है, एक हमारे अंदर जो परमात्मा है तो उनको छुट्टी देने के लिए तो भगवत धाम जाना चाहिए, क्योंकि भगवत धाम में कोई परमात्मा नहीं है। वहां पर तो गोपियां वो ध्यान अवस्था में बैठी हैं, और नारद मुनि आकर पूछते हैं कि ये गोपियां क्यों ध्यान अवस्था में बैठी हैं? तो वो कहती हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं ताकि ये कृष्ण जो हमारे हृदय में बैठ चुके हैं इनको बाहर निकालें। ये उनकी स्थिति है। बड़े बड़े योगी ध्यानस्थ बैठे हैं ताकि उस परमात्मा का साक्षात्कार वो कर सकें, और यहां पर गोपियां ध्यानस्थ बैठी हैं ताकि भगवान को अपने हृदय से बाहर निकाले। तो नारद मुनि ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं, हम एक कार्य नहीं ठीक से कर पाते। केवल हमारे हृदय में बस केवल कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण ही दिखता है, तो न हम परिवार का देखभाल ठीक से कर पाते हैं, बच्चों का देखभाल, न गायों का देखभाल, कुछ नहीं हो रहा हमसे, ये उनकी स्थिति है। तो वहां पर कोई परमात्मा नहीं है, वहां पर यदि इन शुद्ध भक्तों के हृदय में है भी तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर। तो देखिए भगवान की कृपा कि हम भगवान को ठुकराकर यहां पर आए, परंतु भगवान हमें हमारी सहायता करने के लिए पीछे पीछे हमारे साथ सबसे निकट हैं, वही भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर। और इसलिए हालांकि माता उत्तरा वो गई, कहा गया है कि एक शिशु के लिए पूर्ण सुरक्षा माता देती है, और वो माता जो गर्भवती है, अब शिशु अंदर है गर्भ में, तो वो तो अवश्य ही पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए, परंतु यहां पर यह दर्शाया गया है कि यदि माता भी पूर्ण प्रयास करे अपने शिशु को सहायता करने के लिए, परंतु यदि भगवान की इच्छा नहीं तो वो भी नहीं कर सकती पूर्ण सहायता। केवल भगवान ही है जो व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा दे सकते हैं। इसीलिए यहां पर इस श्लोक में कहा गया है कि वो जो ब्रह्मास्त्र था वो अमोघ था, और उसका जो वेग, उसका जो तेज था, जैसे ब्रह्म ज्योति से तेज निकल रहा है जो कि भगवान की ज्योति है, उस प्रकार का तेज था इस ब्रह्मास्त्र में, इसलिए उसका नाम भी ब्रह्मास्त्र है। परंतु भगवान जो कि ब्रह्म ज्योति के स्रोत हैं, कौन सा ब्रह्मास्त्र ऐसे भगवान को कुछ कर सकता है? इसलिए भगवान के सामने ये ब्रह्मास्त्र शांत पड़ गया। तो जैसे यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण या विष्णु ही एकमात्र व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, जिनकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। जैसे गीता में भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, की मेरी शरण ग्रहण करो। और वही भगवान जिन्होंने कह दिया कि मेरी शरण ग्रहण करो, वही भगवत गीता में जो भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत में भगवान ने उसे दर्शाया कि जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है उसकी सहायता मैं कैसे करता हूं, जैसे यहां पर इस प्रसंग में हम पढ़ रहे हैं। और 11वें स्कंद में जहां पर उद्धव गीता आती है, जो भगवान ने उद्धव को गीत सुनाया, उद्धव गीता, तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद में उद्धव गीता में, जहां पर भगवान को श्री उद्धव एक बहुत ही सुंदर श्लोक में कह रहे हैं गुणगान करते हुए कि हे भगवान, क्यों आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी साधना भक्ति में हम चेष्टा कर रहे हैं भगवान की शरण ग्रहण करने की, तो हमें पता रहना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण जिनकी शरण में ग्रहण करना चाहता हूं, क्यों मैं करूं। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी कंपनी में जाता है जॉब के लिए, तो सबसे पहले देखता है कि ये कंपनी में क्या गुण है ताकि मैं इसमें अपना अपनी सेवा दूं। तो यहां पर श्री उद्धव कह रहे हैं इस श्लोक में, भगवान को ही कह रहे हैं कि मैं केवल आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूं, क्यों। तो वो सात विभिन्न प्रकार के भगवान के गुण दर्शा रहे हैं श्लोक में कि ये व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण हो पूर्ण प्रकार से, वही व्यक्ति किसी व्यक्ति को शरण दे सकता है पूर्ण प्रकार से। तो श्रीमान उद्धव जी वो कहते हैं, तस्माद् भवन्तम् अनवद्यमनंत पारम सर्वज्ञमीश्वरम अकुंठ विकुंठ धिष्ण्यम निर्विण्ण धीर अहम उहे वृजनापि तप्तो नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। तो वो सात विश्लेषण दे रहे हैं भगवान का गुणगान करते हुए, सात गुण भगवान के बता रहे हैं कि क्यों आपके अंदर ये गुण है कि हर एक व्यक्ति आपके ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, वो अपने आप की स्थिति बता रहे हैं। निर्विण्ण धीर वृजनापि तप्तो, कि मेरी स्थिति ऐसी है कि इस भौतिक संसार में मैं तप रहा हूं। कई बार हमें लगता नहीं होगा कि हम तप रहे हैं इस भौतिक संसार में, जैसे ये जो समय है साल का, इसमें यदि हम कहें कि हम तप रहे हैं, अनुभव हो रहा है तप रहे हैं, तो कहेगा प्रभु जी आप ही स्वेटर पहने हुए हैं, ये कौन सा तपना, किसके विषय में आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी ठंडी है। और यदि पाश्चात्य देश में जाओ तो वहां पे तो वहां पर कहा गया है कि वहां पर और ज्यादा लोग तप रहे हैं, परंतु पाश्चात्य देश में जाके देखो तो वहां पर तो बर्फ गिर रही है बाहरी दृष्टिकोण से देखे तो ये कौन से तपने का आप कह रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं। संसार दावानल कहा गया है कि पूरा जो संसार है ये एक दावानल के समान है। दावानल कोई साधारण अग्नि नहीं है। जैसे अग्नि की आवश्यकता हमें पड़ती है भोजन पकाने के लिए, परंतु कोई व्यक्ति दावानल में भोजन नहीं पकाता कि चलो खिचड़ी बनानी है तो दावानल में खिचड़ी बनाते हैं। दावानल एक जैसे वन में जब आग लग जाती है तो उसे कहते हैं दावानल। तो यहां पर उद्धव कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं तप रहा हूं इस संसार दावाग्नि में। और उद्धव जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं वो कह रहे हैं, कई बार जब हमें पूछा जाता है कि कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, परंतु यहां पर उद्धव जी भगवान के सामने भगवान का दर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तप रहा हूं। वृजिनापि तप्तो निर्विण्ण धी वृजिनापि तप्तो, कि मैं तप रहा हूं इस संसार में। और फिर वो बता रहे हैं कि ये जो मेरी तप्त अवस्था है, इस तप्त अवस्था को दूर करने के लिए आप ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। और फिर वो शुरू करते हैं भगवान का गुणगान करते हुए, कहते हैं सबसे पहले आपको कहा गया है अनवद्य, कि यदि हम किसी मालिक की शरण ग्रहण करना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी को बॉस बनाना चाहते हैं, तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ये सारे गुण उस बॉस में होने चाहिए। सबसे पहला गुण अनवद्य, यहां पर तात्पर्य में एक जो भौतिक मालिक होता है किसी सेवक का, और भगवान जो अपने भक्तों के मालिक होते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहला गुण भगवान का बताया गया है कि वो अनवद्य है। अनवद्य का अर्थ होता है जिसके अंदर कोई प्रकार की खोट न हो, कोई त्रुटि न हो, कोई खोट न हो, उसे कहते हैं अनवद्य। तो यदि हम इस भौतिक संसार में किसी भौतिक व्यक्ति को अपना बॉस बनाए हैं और यदि उसके अंदर हम देखें तो एक नहीं दो नहीं कितनी खोट पाएंगे, कई बार तो खोट ही खोट पाते हैं, कि ये तो त्रुटियों से ही भरा पड़ा है। और अक्सर देखा गया है कि ऑफिसों में जब तक बॉस इर्द गिर्द नहीं है, आया नहीं है, तो उस बॉस की इतनी निंदा होती है सब जगह, परंतु जैसे ही बॉस आ जाता है, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, और क्या लेंगे सर, चाय लेंगे सर, कॉफी लेंगे सर, या ये करेंगे वो करेंगे, सर सर सर। परंतु जैसे ही सर ऑफिस से बाहर निकले, तब फिर वो गुड मॉर्निंग हो गया बूट मारिन। एक हमारा एक कलीग इस प्रकार से कहता था अपने बॉस को। तो क्योंकि त्रुटियां हैं इस संसार में, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा मालिक बन जाए, उसके अंदर हर समय त्रुटियां रहती हैं, खोट रहती हैं। परंतु यहां पर उद्धव कहते हैं कि आपकी जो शरण ग्रहण करता है, आपके अंदर कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। जैसे समुद्र मंथन में एक कथा आती है कि जब लक्ष्मी देवी उस मंथन से बाहर आई, तो लक्ष्मी देवी ढूंढ रही थी एक वर को, और जो वर माला डालने के लिए एक वर को ढूंढ रही थी, योग्य वर। तो श्लोक के बाद श्लोक वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी देवी, यहां तक कि सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सारे देवता, ऋषि मुनि, इन सबको जब लक्ष्मी देवी देख रही थी एक एक कर, तो सब में कुछ ना कुछ खोट निकाल ली कि ब्रह्मा जी इस वर माला के योग्य नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ये खोट है, शिव जी इनके अंदर ये खोट है, यहां तक कि अलग अलग प्रकार के जो बड़े बड़े ऋषिगण थे, उनके अंदर उन्होंने कुछ त्रुटि निकाली। और अंततः जब नारायण के समक्ष लक्ष्मी देवी पहुंची, तो नारायण को वरमाला देते हुए कहती हैं, यही योग्य व्यक्ति हैं इस वरमाला के लिए। तो सबसे पहला गुण वो भगवान का बता रहे हैं कि आप अनवद्य हैं, बिना किसी त्रुटि के। और फिर आगे कहते हैं उद्धव जी कि क्यों मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, और क्यों किसी को भी आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा गुण आप में है, आप हैं अनंत पारम। जैसे कि संसार में हर एक व्यक्ति का अंत होने वाला है, परंतु भगवान का एक नाम है अनंत, कि जिनका कभी अंत नहीं होता। और यहां पर अनंत पारम का अर्थ है कि वो भगवान जो काल और किसी स्थान से बाधित नहीं है। जैसे हम लोग इस भौतिक संसार में काल और स्थान से बाधित रहते हैं, टाइम एंड स्पेस। जैसे हम लोग अब यहां पर बैठे हुए हैं, तो हम बाधित हैं कि हम एक साथ यहां पर भी और हमारे घर पर नहीं बैठे रह सकते, और हम काल से बाधित हैं। यदि हमें तुरंत इसी क्षण अपने घर पर पहुंचना है, तो वो नहीं हो सकता, समय लगेगा, कुछ काल लगेगा पहुंचने में। तो हमारा शरीर हमारे कर्मों से, इस भौतिक संसार के काल से और स्थानों से बाधित है, परंतु भगवान जो है वो अनंत पारम, यहां पर कहा गया है कि वो किसी प्रकार के काल और किसी प्रकार के स्थान से बाधित नहीं है। इसलिए इस भौतिक संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी का मालिक है, तो वो पूर्ण प्रकार से उसका मालिकत्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाधित है काल से और स्थान से, इसलिए। परंतु भगवान, उनकी शरण सबको ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो बाधित नहीं है, वो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अपने सेवक की रक्षा करने के लिए पहुंच सकते हैं। यहां पर तो सेवक की रक्षा करना तो दूर, वो जो मालिक है वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। तो पता लगता है कि मालिक का तिरोभाव हो गया, और मालिक के तिरोभाव के लिए सब सेवक जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो रशिया में वहां का जो एक समय का लीडर था स्टालिन, वो बहुत क्रूर व्यक्ति था एक प्रकार का। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि उसके मरने के पश्चात बहुत से लोग लाइन लगाकर वो जो जहां पर उसे दफनाया गया था कब्रिस्तान, वहां पर जाकर दर्शन ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कारण क्या था दर्शन लेने का, कि सब कुछ सब व्यक्ति वहां पर जाकर देख रहे थे कि अंदर है ना, मरा है ना, बराबर बाहर तो नहीं निकल गया फिर से, इसलिए जाकर वो कोई संशय नहीं रख रहे थे कि अब ठीक से जिएंगे। तो यहां पर के जो मालिक होते हैं, जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो बाधित हैं काल से और स्थान से, परंतु भगवान उनकी शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो अनंत पारम है। और फिर उद्धव कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जब कोई मालिक होता है किसी का, तो वो अपने सेवक के विषय में कुछ जानता नहीं, कुछ ज्ञान नहीं होता। यदि सेवक कहीं पर तकलीफ में है तो ऐसा नहीं कि मालिक को पता लग जाएगा कि मेरा सेवक तकलीफ में है और तुरंत मालिक वहां पर पहुंच जाए उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, उल्टा वो तकलीफ और देता है उस व्यक्ति को। परंतु हे भगवान, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिसकी शरण सबको ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। ये तीसरा गुण वो बता रहे हैं भगवान का, आप सर्वज्ञ हैं, और क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं इसीलिए आप सब जानते हैं कि आपके कौन से सेवक कहां पर किस तकलीफ में हैं। जैसे कि हम पिछली बार ये श्लोक कह रहे थे विष्णु सहस्त्र नाम से, जिसमें बहुत ही सुंदर भगवान का गुण बताया गया है। श्लोक में कहा गया है गुरुर गुरुतम धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष अनिमिष स्वाघ्री वचस्पति उदार दी। इस श्लोक में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान को दो नामों से उल्लेख किया गया है, निमिष और अनिमिष। तो निमिष कहते हैं किसी व्यक्ति की पलके बंद होती है तो उस व्यक्ति को निमिष कहते हैं, और अनिमिष उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी पलकें कभी बंद ना हो। तो यहां पर भगवान को दोनों शब्दों से उल्लेख किया गया है, निमिष और अनिमिष दोनों हैं वो। तो कोई व्यक्ति पूछेगा भाई दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो उनकी पलक नहीं झपकती होगी या फिर झपकती होगी, ये दोनों कैसे संभव है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान को निमिष कब कहा गया है, जब भगवान के सेवक या कोई भी बद्ध जीवात्मा इस भौतिक संसार का जब कोई गलत कार्य करता है तो भगवान निमिष हो जाते हैं, भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और वही भगवान जब ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति चेष्टा कर रहा है मेरी भक्ति करने की, हालांकि वो उसकी पलके बंद हो रही हैं जप में या प्रवचन में उसकी पलके बंद हो रही, परंतु भगवान अनिमिष हो जाते हैं जब देखते हैं कि थोड़ी बहुत स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कि थोड़ा बहुत धर्म वो कर रहा है, तुरंत भगवान अनिमिष बिना पलक झपके उस व्यक्ति का जो कार्य है भक्ति का उसको तुरंत नोट करते हैं भगवान। तो इसीलिए यहां पर उद्धव जी भगवान को सर्वज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं इसलिए आप जानते हैं। जैसे गजेंद्र जिस स्थिति में थे तो तुरंत भगवान जान गए कि कहां पर गजेंद्र को उस ग्राह ने डसा है। ऐसा नहीं कि वो जो ग्राह था मगरमच्छ जो था पूरा खा पी कर हो गया उसके बाद में भगवान ढूंढ रहे हैं एड्रेस कि ये त्रिकुट पर्वत कहां पर है जहां पर गजेंद्र को, ऐसा नहीं कि एड्रेस पूछते पूछते आ रहे हैं और जहां तक पूछते पूछते आए तब तक गजेंद्र का काम हो गया खत्म। कहा है कि गजेंद्र जब उन्होंने भगवान को पुकारना शुरू किया तो भगवान का नाम खत्म होने से पहले, उच्चारण खत्म होने से पहले भगवान पहुंच गए उधर, इतना फास्ट थे भगवान। तो इसलिए भगवान को यहां पर सर्वज्ञ कहा गया है कि वो सबके ज्ञाता हैं, उनके विशेष रूप से सेवकों के ज्ञाता हैं। फिर उद्धव ये प्रश्न पूछते हैं कि हो सकता है कि किसी में ये सारे गुण हों, अनंत पारम, अनवद्य, सर्वज्ञ, परंतु यदि उसके अंदर बल नहीं है, उसके अंदर वो ईश्वरता नहीं है, तो वो कैसे अपने सेवक की सहायता करेगा। तो इसलिए वो चौथा गुण भगवान का बता रहे हैं कि आप सक्षम हैं, आप ईश्वर हैं, केवल ईश्वर नहीं, आप परमेश्वर हैं। और इसीलिए इस भौतिक संसार का जो मालिक होगा किसी व्यक्ति का, उसके अंदर सब गुण नहीं है या पूर्ण प्रकार का बल नहीं है कि वो अपने सेवकों की रक्षा कर पाए। इसीलिए तात्पर्य में यहां पर लिखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी देश की शरण ग्रहण करता है कि ये जो देश है मेरी रक्षा करेगा, परंतु देश भी खत्म हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा जो परिवार है वो मेरी रक्षा करेगा, परंतु परिवार भी खत्म हो जाते हैं। गजेंद्र की स्थिति लीजिए कि गजेंद्र को जब उस मगरमच्छ ने डस लिया, पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने सबसे पहले अपने परिवार वालों की तरफ देखा कि इतना सब कुछ खिलाया पिलाया, कुछ अभी मदद करो। तो गजेंद्र की जो पत्नी थी और गजेंद्र के जो बच्चे थे वो केवल देखते रह गए। तो गजेंद्र पुकार रहा है कि कुछ करो, सहायता करो, मुझे बाहर निकालो इस सरोवर से, इस मगरमच्छ को मारो। और वो लोग केवल देखकर असहाय अवस्था से ये कह रहे थे, जब तुम खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, हम क्या मदद करेंगे। तब फिर गजेंद्र ने सोचा कि एक व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकते हैं और वो है भगवान। इसलिए नीति में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अब मरण अवस्था में है, लेटा हुआ है, अब मरने जा रहा है, तो वो सहायता मांग रहा है कि कौन व्यक्ति अब मेरी सहायता करेगा, मेरे साथ आएगा मेरी इस मरण यात्रा में। तो कहा गया है, वो पूछ रहा है कि जो मेरा धन है, ये धन मेरे साथ आएगा कि नहीं मेरी सहायता करने के लिए। तो उसे उत्तर मिलता है, धनानी च भूमौ, कि जो तुम्हारा धन इतना इकट्ठा तुमने किया, ये सारा धन केवल भूमि में ही गड़ा रह जाएगा। पहले के जमाने में धन को भूमि में छिपा कर रखते थे। तो व्यक्ति जब मरने की अवस्था में है तो धन कहां रह जाएगा, धनानी च भूमौ, भूमि में ही रह जाएगा। तो वो व्यक्ति पूछता है कि ठीक है, ये जो मेरे सारे जानवर थे घर में जिसको मैंने पाला, ये सारे जानवर क्या मेरे साथ नहीं आएंगे मेरी सहायता करने के लिए। तो कहा गया है, पशु गोष्ठते, कि सारे जो पशु हैं, जैसे आप आजकल तो कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरी कार या मेरा स्कूटर जो कुछ है वो मेरे साथ आएगा कि नहीं, या मुझे इस यात्रा में ले जाएगा कि नहीं मेरी अंतिम यात्रा में। तो कहा गया है, पहले के जमाने में पशु हुआ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो पशु गोष्ठतः, कि सारे जो पशु हैं वो गोश्त में ही रह जाएंगे। गोश्त कहते हैं जैसे गौशाला जहां पर गौवें रहती हैं, या जो तबेला जिसे कहते हैं। तो कहा गया है कि ये सारे जो पशु हैं वहां पर रह जाएंगे। तब फिर ये पूछ रहा है कि अरे मेरी पत्नी क्या मेरे साथ नहीं आएगी इस अंतिम यात्रा में। तो उत्तर मिलता है उसे, स्वभार्या गृहे द्वारी, कि जो स्वयं की भार्या है उसको अनुमति कहां तक आने की है, कि केवल गृह द्वार बस। उसके बाद जो शव है वो बिना भार्या के ही बाहर जाएगा। तो वो पूछता है कि ये सारे जो मेरे स्वजन हैं, ये स्वजन जो है इनको इतना मैंने सब कुछ दिया है, ये स्वजन क्या मेरे साथ नहीं आएंगे। तो कहा गया है स्वजने स्मशाने। ये जो स्वजन है ठीक है, भार्या तो केवल गृह द्वार तक, ये स्वजन गृह द्वार के बाहर तुम्हारे शव को स्मशान भूमि तक ले जाएंगे और वहां तक संग देंगे, स्मशान भूमि तक। स्वजने स्मशाने। तब फिर ये पूछता है कि ये जो मेरा देह, इसको इतना खिलाया पिलाया पहनाया, क्या ये देह मेरे साथ नहीं आएगा इस यात्रा में? तब फिर उसे उत्तर मिलता है देहे चितायाम, ये देह केवल चिता तक ही रहेगा तुम्हारे साथ, उसके बाद ये भी भस्म बनकर वहीं पर रह जाने वाला है, और फिर तुम्हें जाना है केवल एक व्यक्ति के साथ, और वो है परमात्मा, जिसके विषय में नहीं पूछा तुमने। तो बिना पूछे भी वो जाएंगे तुम्हारे साथ, यह है भगवान की कृपा। सब कुछ उसने पूछ लिया, धन, भार्या, पशु, स्वजन, देह, सब कुछ पूछ लिया, ये सब मेरे साथ आएंगे कि नहीं, और सब रह जाएंगे पीछे, केवल परमात्मा जाएंगे। तो यहां पर उद्धव भगवान से कह रहे हैं कि आप ही वो ईश्वर हैं जिनके अंदर पूर्ण बल है अपने सेवक की रक्षा करने का। और फिर आगे वो कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जब व्यक्ति किसी की सेवा करता है, किसी मालिक की सेवा करता है, तो उसे पूर्ण ज्ञान कभी नहीं मिलता कि ये सेवा का परिणाम क्या होगा, क्या मिलने वाला है उसे। कई बार तो सेवा करता है परंतु और कुछ मिल जाता है सेवा के बदले। जैसे एक कथा है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसने एक नौकर को रखा, तो नया नया नौकर था, तो वो एक राजा राजा था, व्यापारी नहीं, एक राजा था। तो नया नया नौकर था, तो एक ऐसी स्थिति हुई जब राजा के सारे सगे संबंधी आए और एक पार्टी जैसा हो रहा था, भोजन के लिए सबको बुलाया गया था, तो राजा ने इस व्यक्ति को कहा कि तुम सबको भोजन परोसो। तो राजा भी बैठा था उनके साथ, तो ये जो नया नया सेवा का भोजन परोस रहा था, तब दाल डाल रहा था, तो थोड़ी सी दाल और राजा के कपड़े पर गिर गई। तो ये राजा इतना क्रोधित हुआ कि तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा कि इसको तुरंत खत्म कर दो, इसका सर धड़ से अलग कर दो। तो सैनिक भी थोड़ा, क्यों क्यों अलग कर दे, दाल मेरे कपड़े के ऊपर डाली इसने, इसकी हिम्मत ऐसी। तो ये जो सेवक, इसने जब सुना कि दाल एक बूंद गिरी है इसके कपड़े के ऊपर और मेरा सर धड़ से अलग कर रहा है ये, तो पूरी जो बाल्टी थी दाल की ओर डाल दी पूरी ऊपर। तो अब तो ये राजा, सोचो अब क्या हालत हुई होगी इस राजा की, ऐसे क्रोध में ये फुफकार रहा था, परंतु इसे ये समझ में नहीं आया कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई इसकी। तो ये जानना चाहता था कि कोई पागल व्यक्ति है कि कुछ कारण होगा ऐसा करने का। तो पूछा क्यों किया, तो ये सेवक कहता है कि देखो राजन, मैंने केवल एक बूंद दाल की गिराई और आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं उसके लिए। बाहर जब लोग सुनेंगे कि ये सेवक को मृत्यु दंड दिया गया, क्यों, एक बूंद दाल डालने की वजह से, तो वो आपकी निंदा करेंगे, इसलिए मैंने पूरी दाल डाली, ताकि कुछ विशेष कारण होना चाहिए मेरे को मृत्यु दंड देने का, तो लोग आपकी निंदा नहीं करेंगे, फिर तो लोग कहेंगे हाँ अरे पूरी बाल्टी भरकर डाली तो ठीक है। तो वो जो दंड उसे मिला वो वाजबी था। तो यहां पर वही उद्धव जी भगवान को कह रहे हैं कि आप अकुंठ विकुंट धिष्ण्यम, ये भगवान का पांचवा गुण बता रहे हैं कि स्वयं आप वैकुंठ धाम हैं और आपकी जो सेवा करता है उसे पूर्ण प्रकार से ये ज्ञान आप दे देते हैं कि ये सेवा के पश्चात क्या मिलने वाला है तुम्हें, क्या मिलने वाला है, वैकुंठ धाम। और इसलिए भगवान को अकुंट विकुंठ धिष्ण्यम कहा गया है। तो उद्धव कह रहे हैं कि ये आपका गुण है जिसके वजह से मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। और फिर वो छठा गुण भगवान का बता रहे हैं, भगवान को उल्लेख कर रहे हैं नारायण कहकर। ये जो नारायण भगवान का एक नाम है, इसका अर्थ बताया गया है, नर आप लोग जानते हैं, हम सबको कहा गया है नर, और नार कहा गया है महाविष्णु को। हमें नर कहा गया है संस्कृत में मनुष्यों को, और महाविष्णु जो हैं उनको नार कहा गया है। और उनके जो आयन हैं वो हैं कृष्ण, और उनका नाम है नारायण। तो जो केवल हमारे ही शेल्टर नहीं, शरण नहीं, बल्कि महाविष्णु भी उनके शरण ग्रहण करते हैं, वो है नारायण। तो इसीलिए उद्धव ये कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, कोई मान लो बहुत सी कंपनियां हैं उसकी, टाटा बिरला इस प्रकार के व्यक्ति, उनको कुछ पता नहीं होगा कि उनके कौन से कंपनी में कौन सा वर्कर किस स्थिति में काम कर रहा है, कुछ पता नहीं होगा। परंतु यहां पर उद्धव जी भगवान को नारायण कह रहे हैं और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि हालांकि आप केवल नर के आयन नहीं बल्कि नार के भी आयन हैं, महाविष्णु के भी आयन हैं, परंतु फिर भी आप ठीक ठीक जानते हैं कि कौन सा सेवक आपका इस सृष्टि के किस कोने में आपकी सेवा कर रहा है, और आप तुरंत वहां पर उसे अपनी शरण देते हो। इसीलिए आप ही एकमात्र नारायण हैं जिनकी शरण मुझे ग्रहण करनी है। और अंततः उद्धव वो भगवान को एक बहुत ही सुंदर नाम से उल्लेख कर कर कहते हैं कि आप केवल नारायण नहीं बल्कि नर सखम, आप नर सखा हो, आप केवल हमारे मालिक ही नहीं बल्कि आप हमारे सखा भी बन जाते हो हमारी रक्षा करने के लिए। इसीलिए वो कहते हैं शरणम प्रपद्ये, इसीलिए आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसकी शरण मुझे ग्रहण करनी चाहिए। और यदि उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे शरण ग्रहण करनी चाहिए और मैं तप्त हूं इस संसार में, तो हमारी स्थिति क्या है? तो हमें तो हर एक क्षण अपनी स्थिति जान लेनी चाहिए, और हर एक क्षण ये भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके सारे गुण उद्धव जी कह रहे हैं, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जैसे यहां पर उत्तरा भगवान की शरण ग्रहण कर रही हैं और तुरंत भगवान ये सारे गुणों से वशीभूत भगवान आकर परीक्षित महाराज की रक्षा कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान ने की जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे अपनी माता के। तो हमें भगवान की शरण अभी ग्रहण कर लेनी चाहिए ताकि फिर से हमें किसी के गर्भ में न जाना पड़े। तो इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि केवल ये इतना सरल उपाय है कि हम जहां कहीं पर भी हैं, चाहे गर्भ में हैं, चाहे गर्भ के बाहर हैं, या कोई व्यक्ति किसी पशु योनि में भी है, उनका भी उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया जब उन्होंने केवल हरिनाम श्रवण किया। तो ये वही श्री कृष्ण जो नार के भी आयन है, महाविष्णु के भी वो स्रोत हैं, वो शरण हैं, वही भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो देखिए उनकी केवल एक ही गुण है उनके अंदर, और वो है कृपा, कृपा अवतार, और वो हमारा कोई गुण नहीं देख रहे क्योंकि वो निमिष और अनिमिष दोनों हैं। कि हमारे दुर्गुण को वो दुर्लक्ष कर रहे हैं और जो कुछ यहां वहां थोड़ा कुछ हमारे अंदर कुछ गुण हो उसको तुरंत वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए यही हमें इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि एकमात्र व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और एकमात्र तरीका है इस कलयुग में भगवान का नाम द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है?